फाइल 15, उपन्यास दिल एक सादा कागज, पृष्ठ 152 से। ये बात नारायणगंज में सभी जानते थे कि पिछले चुनाव तक मक्खनलाल जी ठाकुर साहब के खासुल खास आदमी थे, और ये कि उनके चुनाव में ठाकुर साहब ने पानी की तरह रुपया बहाया था। पर एक ठाकुर साहब बाबू चिरौंजी लाल, एडवोकेट हाईकोर्ट हाल प्रैक्टिस तहसील नारायणगंज को चुनाव लड़वाना चाहते थे कि बाबूजी के एक दूर के ससुराली नातेदार लखनऊ में मिनिस्टर लग गए थे। मक्खनलाल जी को ये बात जाहिर है कि अच्छी नहीं लगी, चुनाचे उनमें और ठाकुर साहब में उलझ गई, जिसके नतीजे में केला के पाखाने का सारा झगड़ा खड़ा हो गया। और इसीलिए हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहते थे, वो हवा का रुख देख रहे थे। अगर मक्खनलाल का पासा पड़ता दिखाई दिया तो वो अगले चुनाव में मक्खनलाल का साथ देंगे, और यदि मक्खनलाल के तीन पात ही रह गए तो वो ठाकुर साहब से बुरे क्यों बने। और वो जानते थे कि यदि उन्होंने तुरंत नए मास्टर की बात उठाई तो मक्खनलाल यकीनन नए मास्टर का साथ देंगे। खुद ठाकुर साहब ने भी यूं मक्खनलाल को दूध की मक्खी की तरह हरगिज ना निकाल फेंका होता। पर किस्सा ये था कि नारायणगंज में एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और ठाकुर साहब इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो स्वतंत्र से कांग्रेसी बनने पर मजबूर से हो गए थे। ठाकुर साहब पब्लिक सेक्टर के उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुफ्त दे चुके थे। ये अलग बात है कि वो जमीन किसी लायक नहीं थी, बरसात में पानी रुकता था, और यदि उसे भरा जाए तो इस पर इतना खर्च आएगा कि कहीं और इतनी ही बड़ी एक और जमीन खरीदी जा सकती है। राम अवतार ने इसी भूमिदान पर ले दे मचाई थी, जिसके नतीजे में उसे लौंडेबाजी के इल्जाम पर निकाल दिया गया था। वो तहजीबुल पर डोरे डाल रहा था। तहजीबुल ने मैनेजिंग कमेटी के सामने रो रो कर अपनी कथा सुनाई थी। फैसला ये हुआ था कि यदि राम अवतार पर मुकदमा चलाया गया तो तहजीबुल पर इसका बुरा असर पड़ेगा, और हो सकता है कि नारायणगंज में हिंदू मुस्लिम तनाव भी पैदा हो जाए। ठाकुर साहब को तहजीबुल बड़ा मजेदार दिखाई दिया था। उसे तकसीम देने के बहाने उन्होंने उसी मीटिंग में उसे टटोल कर देखा भी था, और ये जानकर खुश भी हुए थे कि तहजीबुल तजर्बाकार लड़का है। उस दिन के बाद से तहजीबुल अपनी दोपहरें ठाकुर साहब के ही साथ गुजार रहा था। वैसे भी तहजीबुल बड़ा सहल लड़का था। घर के नौकरों के बाद उसने सबसे पहले मौलवी अली अहमद आजिज का जी खुश किया था। मौलवी साहब उसे उर्दू पढ़ाने आया करते थे, और ये तहजीबुल अब रफ्फन पर आशिक हो गया था। मौलवी साहब निगाहें पहचान सकते थे। उन्होंने जब बहुत फरियाद की तो तहजीबुल हंसता हुआ भाग गया, और आजिज साहब अपनी शेरवानी का दामन दबाए बैठे रह गए। उन्हें कई मिनट बैठना पड़ा, क्योंकि यदि वो उठ जाते तो भांडा फूट जाने का डर था। और तभी से तहजीबुल ने मौलवी साहब की चिढ़ बना ली। वो उन्हें बड़ी तफसील से बताता कि रात बागी साहब उसके ख्वाब में आए थे, और फिर उन्होंने उसे किस तरह पटाया। मौलवी साहब बेचारे सुनते जाते और जलते जाते, और फिर बयान करते करते तहजीबुल वाकई मजे में आ जाता और मौलवी साहब से लिपट जाता, और फिर कहता कि उसे उनकी दाढ़ी गड़ती है, और फिर वो मुंह फुलाकर एक कोने में बैठ जाता और कहता कि पहले अपनी दाढ़ी मुड़वाइए। मौलवी साहब बेहद खुशामदे करते। एक आध बार तो वो रो भी पड़े, और तहजीबुल तालियां बजा बजा कर गाने लगा, खेल में रोए बकुला टोए, खेल में रोए बकुला टोए। मौलवी साहब की जिंदगी अजीरन हो गई। वो घंटों आईने में अपनी दाढ़ी को देखा करते, घेरेदार गज्जिन दाढ़ी, लब तरशे हुए, माथे पर बीचों बीच में सजदे का घट्टा। हर पल के साथ ये ख्याल अलग डंक मारता रहता कि वो हरामजादा अली रफअत उसके लौंडे को इस्तेमाल कर रहा होगा। स्कूल में भी वो मुंह लटकाए बैठे रहते, क्लास में जाते तो तहजीबुल को देखकर ठंडी सांसें भरते और तहजीबुल लड़कों की आंखें बचा बचा कर अपने मुंह पर यूं हाथ फेरता जैसे अपनी दाढ़ी को सहला रहा है। लड़कों का कहना था कि उन दिनों मौलवी साहब ने जुदाई और जलन के शेरों का मतलब बड़ी मेहनत से समझाया और रकीबों वाले शेरों का मतलब समझाते समझाते उनके मुंह से झाग निकलने लगता। आखिर उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वाने का फैसला कर लिया और दाढ़ी मुड़वाने के 3-4 रोज पहले उन्होंने मस्जिद के इमाम से दाढ़ी की बहस छेड़ी कि किताबुल्लाह में ये कहाँ लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब कुरान। बात यहाँ तक बढ़ी कि इमाम ने चीख कर कहा, तो अपनी दाढ़ी मुड़वा क्यों नहीं देते? मौलवी साहब ने उसी दिन दाढ़ी मुड़वा दी। ये उस दिन का किस्सा है जिस दिन लेमू का पानी पीकर मक्खनलाल ने 20 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। केला मुकदमा जीत गया था। नारायणगंज की बूढ़ी औरतों ने बहुत दिनों तक इस दिन को याद रखा। अरे ना, का कहत पाड़ू? ई तो ओ दिन की बात भए जिस दिन माखनलाल अपना भूख हड़ताल तोड़ले रहिलन। पाखाने के मुकदमे के फैसले के ठीक 4 दिन बाद ई खबर आयल रहिल। ग्राम जीवन में यादें कैलेंडर नहीं देखती, महत्वपूर्ण घटनाओं के सहारे बातें याद रखी जाती हैं। ये जीत तो बहुत बड़ी थी। हिंदुस्तानी ग्राम इतिहास के 4000 वर्षों में पहली बार एक तंबोली एक ठाकुर से लड़ाई जीता था और इस जीत के हीरो थे श्री मक्खनलाल एमएलए स्वतंत्र। मक्खनलाल जी का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। कचहरी के सामने वाले खुले मैदान में एक खुली सभा हुई जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि श्री मक्खनलाल का नाम तो इस लायक है कि नारायणगंज के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाए। ये अजीब बात है कि मुहावरे पार्लियामेंट में पास किए जाने वाले एक्टों का एहतराम नहीं करते, नहीं तो गोल्ड एक्ट की मंजूरी के बाद तो इस सुनहरे शब्दों वाले मुहावरे को आम बोलचाल से निकाल दिया जाना चाहिए या फिर इसमें इतना परिवर्तन हो जाना चाहिए कि सुनहरे शब्दों की जगह 14 कैरेट के सुनहरे शब्दों का प्रयोग शुरू हो। उस रात सुबह के ख्याल से केला को रात भर नींद नहीं आई। वो लगभग रात भर अपनी मूछों पर ताव देता रहा और पौ फटने की राह देखता रहा कि आखिरकार सुबह हो गई। केला ने सुबह की पहली सिगरेट जलाई, फिर वो मेलता हुआ उठा क्योंकि अब उसे गांव पार करके खेतों तक तो जाना नहीं था। गांव की तरक्की के साथ साथ खेत यूं भी काफी दूर हो गए थे। केला को याद था कि उसके बचपन में वो घर से निकलता और खेत शुरू हो जाते, फिर उसके देखते देखते पूरा नवा पूरा उग आया और खेत पीछे हटते चले गए। मनुष्य को प्रगति का दाम तो देना ही पड़ता है। कभी कभी खेतों तक पहुँचने में खासी तकलीफ हुआ करती थी और लगता था कि खेतों तक पहुँचना ही संभव नहीं हो सकेगा, पर अब क्या जल्दी थी। सामने ही तो नया पक्का चमचमाता हुआ पाखाना उसकी राह देख रहा था। इस पाखाने पर उसने कुल मिलाकर 19,500 खर्च किए थे। 9,000 पाखाने पर खर्च हुए थे, 500 मुकदमे पर और 10,000 घूस और जलसे जुलूस पर। 5,000 तो मक्खनलाल ही ने लिए थे भूख हड़ताल करने के। मक्खनलाल ने उसे ये भी समझा दिया था कि पैसे का मुंह न देखो। अरे अभी तो हम दम ना लेवे वाले हैं, जब तक कि तू यमल्ले न बन जाओ हमारी जगह पर। पैसा तो भैया हाथ की मैल है, फिर हम तुम्हारे घर में एक ठो फोन भी लगवाए देंगे। मजे में घर में बैठे फोन घुमाया करो इधर उधर। केला तो ये फर्ज भी कर चुका था कि वो यमल्ले बन चुका है। गांधी कैप के बिना वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। दुकान पर भी बैठता तो गांधी कैप जमा कर ग्राहकों से यूं मीठी बात करता जैसे वोट मांग रहा हो। पाखाने की लड़ाई जीतने के सिलसिले में जो आम सभा हुई थी उसमें केला ने अपनी पहली तकरीर भी की। ये तकरीर कालीचरण ने बड़ी मेहनत से 8 दिनों में लिखी थी। कोई 10 दस्ते कागज के खर्च हुए थे। कालीचरण की देखरेख में केला ने खूब खूब रिहर्सलें भी की, पर वो जब 111 आदमियों के ठाठे मारते हुए मजमे में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पसीने में भीग गया, गला सूख गया। कालीचरण समझ गया कि क्या हो रहा है, तो वो माइक्रोफोन को ठीक करने के बहाने लपका हुआ आया और धीरे से बोला, ई चूतिया लोगन से का घबराना, बोल जाइए डपट के। प्यारे भाइयों, और कोई 10-12 बार गला साफ करने के बाद केला ने बोलना शुरू किया, पर और आते आते उसने देखा कि सामने शारदा की माँ भी बैठी है, तो वो बहनों कैसे कहता। उसने बड़ी बेचारगी से शारदा की माँ की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से कल्ले में पान दबाए जुगाली कर रही थी। उसने दिल ही दिल में शारदा की माँ को गालियां देना शुरू कर दिया। बगल से कालीचरण उसके पांवों में चुटकियां ले रहा था, तो उसने घबरा कर अपनी तकरीर फिर शुरू कर दी। प्यारे भाइयों, शारदा की माई और प्यारी बहनों, हम इस समय आपके सामने एक कारण से खड़े भए हैं कि जे जनता की लड़ाई थी और जनता ही जे लड़ाई जीती है। हम तो आपके खादिम हैं। आशा है कि दूसरी लड़ाइयों में भी आप लोग इस खादिम का पूरा पूरा साथ जरूर देंगे। यहाँ तक आते आते वो भूल गया कि उसे आगे क्या कहना है, तो वो फिर से शुरू हो गया। कालीचरण ने चुटकी ली तो वो झल्ला के बोला, रहो जी, तुरे चुटकी आए से तो हम सब भुलाए गए। लोटा लेकर पाखाने की तरफ जाते हुए केला को वो खुली सभा याद आ रही थी, और वो यही सोच रहा था कि मक्खन लाल ही का जिगरा है कि नारायणगंज से दिल्ली तक भशड़ियाते रहते हैं। ये सोचते सोचते उन्होंने पाखाने का किवाड़ खोला, फिर उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई और बगल वाली खुड्डी पर लोटा रख कर वो बैठ गए और फरागत का इंतजार करने लगे, पर पेट में बिल्कुल सन्नाटा था। केला ने जी जान से कोशिश की, पर कोई नतीजा न निकला, तो मजबूरन केला अपने आप को गालियां देता, नवापूरे को पार करता खेतों की तरफ भागा, और नवापूरे में पांव धरते ही उसके पेट में चलत फिरत शुरू हो गई। यदि उस समय वहां कोई दाएं पक्ष वाला होता तो केला को खेतों की तरफ भागता देखकर जरूर ये नतीजा निकालता कि कांग्रेस का सोशलिज्म फेल हो गया। पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए भगवान ने खेत ही बनाए हैं। उसी दिन केला ने मक्खनलाल को अपनी समस्या बताई। मक्खनलाल उस वक्त पान खा रहे थे और कैप्स्टन की 3 डिबिया अपने ब्रीफकेस में रखकर चौथी खोल रहे थे। चौथी डिबिया खोलकर उन्होंने एक सिगरेट केला को भी दी, मरता क्या न करता। केला ने ये सोचकर सिगरेट सुलगाई कि कुछ पैसा तो वसूल हो जाए। जाहिर है कि वो मक्खनलाल से दाम तो नहीं मांग सकता था। हम ई सोच रहे हैं कि ऊ पाखाने के पास पास का बिल्कुल सटी हुई हमारी जमीन है, ओको लेके एक ठो घर बनवा लियो, 25-30 रुपए महीने पर तो उठी जाएगा, हम ले लेंगे किराए पर। कालीचरण को घर की स्कीम तो अच्छी लगी, पर उसने कहा कि घर किराए पर क्यों चलाया जाए, घर में रहा क्यों न जाए। ई साला परदादा नकरदादा का बनवाया घर रहे लायक रह गवा है कहीं। नया जमाना है, नए जमाने के फैशन के अनुसार घर बने के चाहिए कि कोई ई ना कह सके कि केला को रहे का तरीका नहीं आता। यमल्ले होए के बाद अलट्टर कलेक्टर तो रोजे धरे रही है दरवाजे पर, मिनिस्टर लोगन की चाय पानी करे को पड़ी है तो का ई खपरैल के घर में आई है मिनिस्टर लोग। बात ठीक थी, केला की समझ में आ गई। मक्खनलाल की जमीन खरीद ली गई और मास्टर रमजान अली को नक्शा बनाने का काम सौंप दिया गया। जन्नत को ये खबर सायरा बी से मिली, जो ये सुनकर बहुत खफा थी कि केला नया घर बनवा रहा है। पक्के घर में रहे का मुँहो है, लड़की मिडिल पास, लड़का 10वीं फेल, बालिद साहब दिनवा भर पान बेची हैं और रात को सोई हैं पक्के मकान में। मैं तो साफ कह देती हूँ बहनी कि ई साफ कयामत के आसार हैं। सायरा भी शायद देर तक कयामत की बात करती, पर शारदा आ गई और सायरा भी घबरा के चुप हो गई। शारदा बराबर जन्नत पर लगी हुई थी। वो चाहती थी कि जन्नत नारायणगंज महिला सुधार समिति का मोर्चा संभाल ले। यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की है, सरकारी लोगों से रोब नहीं खाएगी और उन लोगों में खप जाएगी जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ नारायणगंज में चले आ रहे थे। नारायणगंज के साथ ही साथ एक पूरा जवाहर नगर आबाद होता चला जा रहा था। सूट बूट पहनकर जीप हांकने वाले लोग इतने आ गए थे कि नारायणगंज की पतली पतली सड़कों और गलियों के लिए इस नई और मशीनी भीड़ भाड़ का बोझ उठाना संभव नहीं था। जवाहर नगर वाले ज्यादातर अंग्रेजी बोलते थे और सब के सब देशभक्त थे। ना होते तो नारायणगंज में मरने क्यों आते? काम शुरू नहीं हुआ था, कार्यालय खुल गए थे, तमाम बड़े बड़े अफसर आ चुके थे, तनख्वाहें पा रहे थे और इस कोशिश में लगे हुए थे कि जो एयर कंडीशनर ऑफिस में लगने वाला है वो पहले उनके बेडरूम में लग जाए। दफ्तर तो अभी थे नहीं, तो चपरासी घर के काम कर रहे थे। इन अफसरों के बच्चों के साथ नारायणगंज तक टेनिस के कोर्ट भी आ गए और क्रिकेट के मैदान भी। जवाहर नगर हायर सेकेंडरी स्कूल की एक आलीशान बिल्डिंग भी बन रही थी। कई हजार मजदूर भी आ गए थे और देखते ही देखते नारायणगंज की आबादी लगभग ड्योढ़ी हो गई। छोटे मोटे 10-12 चाय खाने भी खुल गए। इनमें से कई चाय खानों के नाम शानदार थे। दी ग्रैंड हिंदू होटल, रीगल टी स्टॉल, ताजमहल रेस्तरां। इन चाय खानों में बैठकर मजदूर गंदी प्यालियों में अपने सपनों की मिठास घोला करते थे और अपने वर्तमान में इन्हीं सपनों के पैबंद लगाया करते थे। जहाँ गरीबी ज्यादा होती है वहाँ सपने भी ज्यादा होते हैं और कवि तो सपनों के चींटे होते हैं, महक पर चले आते हैं। यूं तो इन चायखानों में लगभग तमाम राजनीतिक दलों के ब्रीफकेस दिखाई देने लगे थे, पर कवियों में सबसे पहले कालीचरण आया। कालीचरण मक्खनलाल की स्वतंत्र राजनीति का कवि था और ईमान की बात यह है कि मक्खनलाल के बाद लीडरी के लिए कालीचरण से ज्यादा क्वालिफाइड और कोई था भी नहीं। 10वां फेल, शारदा जैसी बहन का भाई और कवि, ये तीनों चीजें किसी एक आदमी में मुश्किल से इकट्ठी होती हैं। कालीचरण सवेरे से ही दी जय माता भवानी टी स्टॉल में अपना प्लास्टिक का ब्रीफकेस लेकर आ जाता। सच्ची बात यह है कि वो प्लास्टिक के ब्रीफकेस से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। वो भी बागी आजमी जैसा ब्रीफकेस चाहता था, असली चमड़े का। मक्खनलाल ने वादा किया था कि अगले चुनाव से पहले तक वो उसे चमड़े का एक ब्रीफकेस जरूर दिला देंगे, यानी अगला चुनाव आने तक उसे लस्टम पस्टम इसी फटीचर ब्रीफकेस के सहारे अपनी शायरी और लीडरी चलानी थी। वो दिन भर दी जय माता भवानी टी स्टॉल में बैठा चाय पीता रहता, सियासत लड़ाता रहता और अपनी कविताएं सुनाता रहता। कविता भी ऐसी, छे छे पैसा चल कलकत्ता, छुक 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 गाड़ी बोली छुक 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 छुक, चलो प्रिय झाड़ी में छिपकर हम भी गाड़ी गाड़ी खेलें, छुक 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 छुक, छे छे पैसा चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, कलकत्ता कलकत्ता। वो आखिरी लाइन के बाद आने वाली चारों डांटे भी सुना डालता। मजदूरों की समझ में ये छे छे पैसे वाली शायरी नहीं आती थी, पर उनके जीवन में मनोरंजन की इतनी कमी है कि उनके लिए कालीचरण भी गनीमत था। तो देखते देखते जवाहर नगर बसने वाले मजदूरों में कालीचरण अच्छा खासा लीडर हो गया। दो उंगलियों में गोल्ड फ्लेक की एक सिगरेट दबाए वो बड़ी गंभीरता से अपने विचार प्रकट किया करता। राम अवतार और रफन के साथ उठ बैठकर उसने अंग्रेजी के कुछ शब्द याद कर लिए थे। मैं कंटेम्परेरी अवेयरनेस यानी आधुनिक चेतना का कवि हूँ। आधुनिक चेतना का मतलब ना वो जानता था और ना ही जय माता दी भवानी टी स्टॉल में चाय पीने वाले मजदूर, और इसीलिए उन पर कालीचरण की धौंस बैठने लगी। धीरे धीरे कालीचरण की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि केला को मजदूर बस्ती में अपनी दुकान की एक ब्रांच खोलने का फैसला करना पड़ा। केला तो ये चाहता था कि इस दुकान पर कालीचरण ही बैठे, पर कालीचरण राजी न हुआ। शारदा ने भी कहा कि यदि कालीचरण पान की दुकान पर बैठा तो उसका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा। पॉलिटिकल कैरियर, इन दोनों शब्दों की आवाज ही इतनी भारी थी कि केला ने हार मान ली। इसीलिए जब दाग साहब ने केला को फ्लेक्स का एक पंप जूता पहनाते हुए कहा, अरे भाई अब कालीचरण को किसी काम से लगाओ, तो केला ने कहा, वो पॉलिटिकल कैरियर ही कर रहा है। अच्छा, दाग साहब खुश हो गए। क्या मिल जाता है एक महीने में? तनख्वाह तो नहीं के बराबर है, बाकी हमारा ख्याल है कि ऊपर की आमद काफी से ज्यादा है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, दाग साहब ने कहा। जरा चल के देख लो, कहीं दबाव बा तो ना रहा। केला तुरंत खड़ा हो गया और दुकान की मैली जाजिम पर चलने लगा। अभी वो ये तय नहीं कर पाया था कि उसे यही जूता लेना है या नहीं, कि आजिज साहब के साथ तहजीबुल आ गया। तहजीबुल को देखकर दाग साहब का मूड बिगड़ गया। अमे लौंडियों की तरह बुलबुली झाड़ के घूमते तुम्हें शर्मो ना आती, वो तहजीबुल पर बिगड़ गए। जवाब में तहजीबुल हंस दिया और जेब से कैप्स्टन की एक डिबिया निकाल के सिगरेट जलाने में मशगूल हो गया। अब यही तहजीब है मौली साहब हैं कि शागिर्द ससुरा सामने बैठा सिगरेट फूंक रहा। मौलवी साहब ने बड़ी बेचारगी से तहजीबुल की तरफ देखा। तहजीबुल ने उन्हें आंख मार दी और फिर उनके कान में कुछ खुसुर फुसुर करने लगा। मौलवी साहब के सारे बदन पर चींटियां रेंगने लगीं। दाग साहब झल्ला कर झाड़न से जूते साफ करने लगे। कौमे लूत का किस्सा अल्लाह मियां गढ़ के थोड़े सुनाइन हुई हैं। कौमे लूत, कुरान में लौंडेबाजी करने वाले एक गिरोह का किस्सा बयान हुआ है। लूत उन लौंडेबाजों में पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। तहजीबुल तो जूता लेकर चला गया, पर उस दिन शाम तक दाग नारायण गंजवी का मूड खराब रहा। और उनका मूड तो शाम को भी ठीक ना होता, पर सूरज डूबते डूबते चीफ इंजीनियर की लड़की जूता लेने आ गई और उन्हें मजबूरन अपना मूड ठीक करना पड़ा। जवाहर नगर के बसने का असर दी अनवारिया शू स्टोर पर भी पड़ा था। अब दुकान पर वो पहले वाला सादा लौह, सीधे साधे फक्कड़ जूतों के साथ साथ अंग्रेजी बोलने वाले और रॉक एंड रोल करने वाले और नेकिंग के वक्त खिलखिलाने वाले फिल्म फेयर और वीकली और न्यूज वीकली और लाइफ मैगजीन पढ़ने वाले जूते भी आने लगे। ये बात बिल्कुल अलग है कि जवाहर नगर वाले कभी द अनवारिया शू स्टोर पर जूते खरीदने नहीं आते थे। खास जवाहर नगर में रीगल, अप्सरा शू स्टोर और टिप टॉप जैसी दुकानें खुल गई थीं, पर दुकानदार को मोल के लिए ऐसी चीज भी रखनी पड़ती है जिनके बिकने की नौबत नहीं आती। पर शीश महल जैसी दुकानों में एक खराबी ये होती है कि हफ्ते में एक दिन बंद रहती है, और अगर चीफ इंजीनियर की बेटी को ठीक उसी दिन जूते की जरूरत पड़ जाए तो उसे पुरानी बस्ती के अनवारिया शू स्टोर तक आना ही पड़ता है। उसका नाम माला था। माला सहगल अच्छी शायरी करती थी। सूरत शक्ल से किसी चीफ इंजीनियर की लड़की लगती ही नहीं थी, बड़ी सादा लड़की थी। ये अलग बात है कि उसकी सादगी बड़ी महंगी थी और वो अपनी सादगी पर बड़ी मेहनत भी किया करती थी। बात यह है कि वो अपने बड़े भाई की देखा देखी कम्युनिस्ट हो गई थी। उसकी वजह से स्टूडेंट फेडरेशन में लड़कों की एक भीड़ लग गई थी। बड़ा बड़ा मुस्लिम लीगी और महासभाई खून लगाकर शहीदों में शामिल हो गया था। ये माला लेनिन और माओत्से तुंग की बातें यूं किया करती थी कि सुनने वाले को लगता कि शायद मार्क्स ने भी इसी माला से मार्क्सिज्म सीखी होगी। माला ने सेक्स को अपने साहित्य का शीर्षक ठहराया था। शुरू में बड़ी ले दे हुई, पर सबको उसका नाम जबानी याद हो गया।